ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली है पढ़ाई। सारी मुरली का सार है पढ़ाई। दुनिया में तो भिन्न भिन्न पढ़ाई होती है, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके लिए भिन्न भिन्न टीचर्स होते हैं। स्टूडेंट्स भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सब कुछ भिन्न भिन्न है, लेकिन बाबा इस पढ़ाई में भिन्नता खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह बेहद की पढ़ाई है, वो तो सब हद की पढ़ाई है, और हद की पढ़ाई में अनेक हदें होती है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होगा, पर यहां हमारा टीचर कौन है? स्वयं भगवान, और वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। हमारी पढ़ाई की विशेषता क्या है? हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, सारे सब्जेक्ट्स है हमारी पढ़ाई में, और एक ही टीचर पढ़ाता है। और वो टीचर कौन है? वो हमारा बाप ही है। तो बाबा कहते हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा बाप हमारा ही टीचर बन करके हमें बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में क्या अंतर है? बहुत अंतर भी है और कुछ समानता भी तो है। वहां यहां तो कभी भी भर्ती हो जाते हैं, 10 साल के स्टूडेंट, 20 साल के स्टूडेंट और 3 महीने के स्टूडेंट सब एक साथ पढ़ते हैं। वहां तो ऐसे नहीं होगा ना, वहां ऐसे नहीं कभी भी भर्ती हो जाओ और कभी भी बैठो, यहां ऐसे नहीं है। वहां ऐसे नहीं है, पर यहां ऐसे है। क्यों यहां ऐसे है? क्योंकि हरेक आत्मा को अधिकार है इस पढ़ाई को पढ़ने का। वहां सबको अधिकार नहीं होता है, कई बातें देखी जाती है, और यहां बाबा कहते हर एक को अधिकार है इस बेहद की पढ़ाई पढ़ने का। और भी कई बातें आज बाबा ने मुरली में सुनाई है, हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 26/5/2026 है। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। भगवान हमारा टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में सदा रहो। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। अब राजयोग की बहुत बड़ी विशेषता है, वो बाबा ने मुरली में भी सुनाई है। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं, राजा बनना यहां सीख रहे हैं। पहले राजा कौन सा? स्वराज्य अधिकारी। ये पढ़ाई से ही बनते हैं ना, इंद्रियों के भी राजा तो मन बुद्धि संस्कार के भी राजा, फिर दूसरा राजा सबके दिलों का राजा। हमारा व्यवहार ऐसा होता है जिससे हम सबका दिल जीत सकते हैं, और फिर बाबा कहते हैं सारे विश्व का राजा। तो इसलिए ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। हम मास्टर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, लीडर बनते हैं, ये राजयोग सिखाता है। तो बाबा कहते हैं हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, क्या खूबी है, क्या इसकी बड़ाई है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। उस पढ़ाई की तो लिमिट होती है, पर इस पढ़ाई की लिमिट क्या है, जहां जीना है ता पीना है। नहीं आते हैं तो पहले हमको कहते बस 7 दिन का कोर्स, बस 7 दिन का कोर्स करते हैं बस, फिर थोड़ा और कुछ पढ़ो, फिर उनको क्या कहते हैं, अभी आजीवन पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। उत्तर है, ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। इस पढ़ाई की ये भी विशेषता है, नए बच्चे पुरानों से तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है, जो 3 मास की के तीखी बुद्धि वाले यानी तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। और कब तक पुरुषार्थ करना है, तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो जाओ। और पास होने की क्या क्राइटेरिया है, कर्मातीत अवस्था, ये है पास होना। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो, कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब चुकतू न हो जाए, तब तक तुमको पुरुषार्थ करते रहना है। और वहां तो बस साल पूरा हुआ, पढ़ाई पूरी हुई, बीए एमए कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, कितना पढ़ लिया, पढ़ाई पूरी हुई। याद तो बाबा कहते पढ़ाई करते रहना है, कब तक, जब तक पूरे पास न हो जाए, कर्मातीत अवस्था न हो जाए, सब हिसाब किताब छूट न जाए, चुकतू न हो जाए। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं, बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चे हो, बेहद के बाप के बच्चे को, बच्चों को, अथवा रूहानी बच्चों को, किसके बच्चे हो, तो किसके बच्चे हो, उस बेहद के बाप के, तो बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, शरीर को नहीं पढ़ाते, रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा ये भी भान हमसे छुड़वाते हैं, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं मैं रूह हूँ। वो तो नाम रूप हो गया, गुजराती हूँ, मराठी हूँ, ये नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है। कौन है बेहद का बाप हमारा, जिसको भगवान कहते हैं। भगवानो वाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये समझते नहीं हैं। कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, परमात्मा तो एक ही है, वो है ऊंचते ऊंच निराकार। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते हैं, और न पढ़ाया था, ऐसे नहीं कि 5000 साल पहले तो श्री कृष्ण ने पढ़ाया था और अभी शिव परमात्मा पढ़ाते हैं, नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते हैं, न पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है, जरूर कोई चीज है। किसको हम भगवान कहते हैं? जरूर कोई चीज है। क्यों बाबा को कहना पड़ता है जरूर कोई चीज है? क्योंकि दुनिया में यही मानते हैं ना, उसका ना नाम है ना रूप है, ना निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है, नाम रूप गुण कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी चीज कोई थोड़ी होती है। ये भी तुम अब समझते हो, सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। तुम भी पहले कहाँ जानते थे, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, पुराने जो है वो बहुत समय से जानते आए हैं। ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते हैं। ये भी खूबी है, 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे जा सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। बाबा को बच्चे लिखते थे, बाबा ये जो आत्मा आई है नया बच्चा है बाबा का, लेकिन इसकी बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं, बड़े गदगद होते हैं बाबा का ज्ञान सुन करके। है तो सब गॉडली स्टूडेंट, पुराने भी गॉडली स्टूडेंट है, नए भी गॉडली स्टूडेंट है, सब गॉडली स्टूडेंट बन जाते हैं। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानो वाच भी गाया हुआ है, परंतु कब कब भगवान ने ज्ञान दिया था कर ये भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं, हाँ ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप ही टीचर होता है। होते हैं कईयों का पिता ही टीचर होता है, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ाएगा ना, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, दूसरी सब्जेक्ट लिए फिर दूसरा टीचर पढ़ाएगा। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है, ये वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ढेर बच्चे जिनको ये निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हाँ वही बैठे हैं ना सब, जिनको निश्चय है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा तो कह नहीं सकते, श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसे तो ही समझे श्री कृष्ण टीचर है या वो हमारा गुरु है, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ तब तक बाबा पढ़ाते रहेंगे, हाँ जब तक तुम पास हो जाओ। कर्मातीत अवस्था को पा लो तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों का हिसाब किताब से भी छूटना है तो तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको, और कौन सी खुशी, भगवान पढ़ाते ये तो खुशी है, लेकिन साथ में कौन सी खुशी, बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे, और हमें कौन सी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ और कोई ऐसे लेके जा नहीं सकता। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हो और समझे, बच्चे बैठे हो और समझे कि परम धाम निवासी बाबा आकर हमको पढ़ाएंगे। ये भी है ना, वो तो टीचर अपने घर से आएगा और हमको पढ़ाएगा, और हमारा टीचर परम धाम से आकर हमको पढ़ाते हैं, और कोई स्टूडेंट ऐसे समझेगा नहीं किसी भी स्कूल में। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो कि हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ये प्रजा योग नहीं है, ये है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है, टीचर इतना बड़ा तो उसका इसके द्वारा जो इम्तिहान वो ना है उस कितना बड़ा है, कितना बड़ा इम्तिहान है। और तुम बैठे कितने साधारण हो, अब ये भी है उस समय बाबा के समय तो कितना साधारण बैठते थे, कोई गद्दे भी नहीं थे, केवल दरी होती थी बस हिस्ट्री हॉल में, कोई कुर्सी सोफा कुछ भी नहीं, सिवाय बड़ी दीदी के लिए एक सोफा होता था, उस पर और कोई नहीं बैठता था, केवल बड़ी दीदी बैठती थी, बाकी सब पट पर, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, हाँ उस समय सब जो बाबा के पास आते थे सब पट पर बैठते थे। तो बाबा कहते हैं हाँ कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। बाबा मिसाल देते हैं जैसे मुसलमानों के मदरसे होते ना, और भारत में भी गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में कैसे बच्चे बैठते थे, और मदरसों में भी मुसलमान वो वहाँ पढ़ते हैं तो कैसे नीचे ही बैठते हैं, कोई कुर्सी सोफा तो होते नहीं। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, और गुरुकुल में भी दरी पर ही बैठकर पढ़ाते थे, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। कितने निश्चय है हमारे अंदर, जिस निश्चय से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो या ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, अब बाबा कहते क्यों श्री कृष्ण नहीं पढ़ा सकता है? अब ऐसे थोड़ी होगा कि श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, अब उसको तो ताज दिखाते हैं, मुकुट दिखाते हैं ना, क्या क्या उसका श्रृंगार दिखाते हैं, तो ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, क्या ताज आदि उतार कर आया होगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए वो ताज पहन करके पढ़ाए कैसे शोभता भी नहीं है ना, तो क्या ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो फिर बुजुर्ग भी चाहिए, वो तो कितना जवान दिखाते हैं, पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग भी चाहिए, बुजुर्ग चाहिए। तो बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, ये फिक्स है, ये तन मेरा फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये भी समझते नहीं है, तो बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। माया फिर क्या करती है, बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं और माया फिर सुला देती है, माया सुला देती है, बाबा सुजाग करते हैं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना, बाबा पूछते मुझे जानते हो ना, क्योंकि सामने तो ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, परंतु बाबा को इसलिए पूछना पड़ता है मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। अब ये श्री कृष्ण के लिए तो कभी नहीं कहेंगे, वो श्री कृष्ण की ये महिमा है ही नहीं कि ज्ञान का सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता। और फिर सबको इकट्ठा तो नहीं पढ़ा सकते हैं, इकट्ठा सबको नहीं पढ़ा सकते हैं। माना मधुबन में मुरली चलती है, अब बाबा तो मधुबन में आते हैं और मधुबन में जो बाबा के सामने होते हैं वही पढ़ते हैं। पहले तो ऐसे ही था ना, मधुबन में जो आते थे वही सामने बैठ के पढ़ते थे, बाकी को तो वो मुरली जब आए तब वो पढ़े उसी मुरली को। तो बाबा कहते हैं वो फिर सब सेंटर्स पर जाती है, मुरली मधुबन में चलती है वो फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था, यही समय था ऐसे ही पढ़ाया था, जो पास्ट हो गया ये फिर अभी प्रेजेंट होना है। जो पास्ट हो गया वो फिर प्रेजेंट होता है, वो फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है, भक्ति मार्ग की बातें बाबा कहते अभी छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत है, भक्ति से प्रीत नहीं है, कर्म कांड ये इन सब से प्रीत नहीं है, तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है। और दूसरा किससे प्रीत है, एक तो ज्ञान से प्रीत है, दूसरा पढ़ाने वाले से प्रीत है ना, पढ़ाने वाले से भी प्रीत है और पढ़ाई से भी प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको फिर सौगात देते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ना टीचर्स डे पर खास स्टूडेंट्स सब आते हैं और टीचर को सौगात देते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो फिर टीचर को सौगात देते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं, मधुबन में जो भी आते हैं बिना सौगात के नहीं जाते है ना, सौगात जरूर मधुबन से बाबा से मिलती है। तो ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं, यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, वो हमारे ये हमारे बच्चे हैं। हाँ बाबा जब आते थे कितनी पावरफुल पहले दृष्टि देते थे, एक एक बच्चे को देखते थे, ये हमारे बच्चे हैं। ये भी बच्चों को ज्ञान है कि सब 84 जन्म तो लेते नहीं है, कोई का एक जन्म भी होता है ना, अंत के समय में आए एक जन्म लिया उसमें ही सुख दुख पास करेंगे उस एक जन्म में। और बाबा ने उस दिन का वो कैसा जन्म होगा, मच्छरों सदृश, मच्छर रात को जन्मे और सवेरे मर गए। तो बाबा कहते हैं तो एक कोई एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो, ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में इस सिजरे में कौन है, पहले नंबर में इस सिजरे में कौन है, ब्रह्मा सरस्वती, क्योंकि आदि पिता है ना, आदि पिता आदि माता, ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं, वो है सब आत्माओं का बीज। तो ये जीनियोलॉजिकल ट्री में वेद के कल्प वृक्ष में पहले है आदि पिता ब्रह्मा बाबा और फिर आदि देवी। लेकिन जो बेहद का जो झाड़ है वह उसमें बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं का जो झाड़ है उसमें बीज है शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं वो है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है, साकारी सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है और आत्माओं के नाते शिव बाबा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है, ये बैच शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे और कोई कर न सके। शूद्र से बदलकर ब्राह्मण बनाए ये केवल ब्रह्मा ही कर सकते हैं। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाने लिए पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अकेले तो नहीं करते, शिव बाबा उनके द्वारा करते हैं। तो बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाने लिए पढ़ा रहे हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात जीवन मुक्ति को पाया अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं ना, परंतु फिर भी समझ नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तुम अशरीरी आए थे फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रुथ है सत्य है वो सत्य ही बताएंगे। हाँ कही कहने कैसे माने, अरे कौन बता रहा है, भगवान बता रहा है, वो ट्रुथ है सत्य है तो सत्य ही बताएंगे, वो सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई है ना, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे, भगवान ने आके राजधानी स्थापन की तो राजयोग उसके लिए सिखाया, तो राजधानी में एक थोड़ी होगा, तो राजयोग भी एक को थोड़ी सिखाया होगा। राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे, तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं ये भी अभी तुम समझ रहे हो। कांटा किसको कहेंगे जो सबको दुख देते हैं, और फूल किसको कहेंगे जो सबको सुख देते हैं। तो कांटा और फूल किसको कहते हैं ये भी अभी तुम समझ रहे हो। ये है ही छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नर्कवासी हुए हैं, फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे, हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ भी करें फिर से करेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी ये याद करना है और नॉलेज समझनी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, अब क्राइस्ट आया, उनके पहले भी तो बहुत थोड़े थे राज, उनके पहले बहुत थोड़े थे हा? और उस समय क्रिश्चियनिटी तो थी नहीं। क्राइस्ट जो आया, जो जीसस बताते हैं, वो तो जू धर्म का था ना, जो जुडाइज्म शुरू हो गया था, अब्राहम पहले आया तो उसने तो जू धर्म की स्थापना की, परंतु क्राइस्ट जो जीसस बताते हैं वो जू धर्म का था, परंतु क्राइस्ट की प्रवेशता हुई तो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। तो कुछ वो नई बातें थी, तो जो जूस थे उनको ये पसंद नहीं आया, ये क्या सुना रहा है, तो इसलिए उनको कैसे क्रूसीफाई किया, सूली पर चढ़ाया। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी, क्रिश्चियनिटी की कोई राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं, स्थापना होती ही है सतयुगी राजधानी की। स्थापना कहाँ होती है, कब होती है, संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये है, अब हम सब कहाँ बैठे हैं, बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं। क्यों आते हैं परमात्मा बाप बच्चों के पास, पावन बनाने। इसको ही संगम का कुंभ का मेला कहा जाता है। यहाँ पावन बनाने बाबा आते हैं, वो समझते उस मेले पर जाएंगे पावन बनेंगे, लेकिन सच्चा मेला तो आत्मा परमात्मा का है और परमात्मा आते हैं पावन बनाने। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। हाँ कितना नशा चढ़ाते बाबा, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश भी तो जरूर होना चाहिए, नर्क और स्वर्ग साथ में तो नहीं चलेगा, स्वर्ग बनाते हैं तो नर्क का विनाश भी चाहिए। कल्प कल्प विनाश भी होता ही है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है, ये तो जरूर होगा। हर चीज नई से पुरानी होती है, फिर पुरानी से ही फिर नई होती है, ये तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, बहुत अनाज पैदा करेंगे कहते हैं, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, हर सेकंड एक बच्चा तो पैदा होता ही रहता होगा, तो इतने बच्चे पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को ये खातरी है, कौन सी खातरी है बाबा हम बच्चों को देते हैं कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ऐसे नहीं इतनी वृद्धि होती जाएगी कहाँ तक होगी, तो इसलिए सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा भी लगता है, जब ये बातें सुनते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि नर्क के बाद स्वर्ग आएगा, सतयुग के देवी देवता होकर के गए हैं, ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। पहले समझते थे क्या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ये भारत के मालिक थे, तो समझते थे ये तो भगवान है ना? ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, चित्र है ना, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म का कहलाते नहीं है, उसके बदले हिंदू कह देते हैं, तो बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये बन रहे हैं। बाबा के आगे हमेशा लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट रहता था, हमेशा बाबा ऐसे ही पॉइंट आउट करते थे हम ये बन रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे, आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्माओं को पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है, गोल्डन एज से सच्चा सोना बनना है तो गोल्डन एज बनना है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, वृद्धि हो जाती है तो क्या है हमारी बुद्धि में, हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अनेक बार ये पाठ बजाया है, इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता। ये बाबा को क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य तो ये समझते हैं हम छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, और बाबा कहते हैं इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं मोक्ष चाहिए, वास्तव में तुमको कहना चाहिए कि बाबा जल्दी घर जाएं। क्यों? क्योंकि वास्तव में क्यों वो मोक्ष चाहते हैं, क्योंकि तंग हो गए। देखो इसमें भी क्या राज है, तंग हो गए हैं इसीलिए कहते हैं हमको आना ही नहीं है दुनिया में, बस भगवान उठा लो, हमको मोक्ष चाहिए। वास्तव में तुमको तंग हो जाना चाहिए। तुमको क्यों तंग होना चाहिए, क्योंकि तुम तो 84 जन्म लेते हो, कितने 5000 साल से तुम इस चक्र में आए हो, तो अभी तो थक गए होंगे ना। वो जो आत्माएं दूसरी है वो तो अभी आई है या बाद में आती है, द्वापर युग के बाद या समझो, तो उनको थोड़ी तंग होना चाहिए, तुमको होना चाहिए। लेकिन अभी संगम पर हम तंग हो रहे क्या, कोई तंग है क्या, हाथ उठाए अगर कोई समझे मैं तो तंग हूँ यहाँ, मुझे बस चाहिए घर जाना है, कोई नहीं, यहाँ सब बहुत खुश बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए, 84 का चक्र तो तुमने लगाया है, मनुष्य तो समझते हैं ये आना जाना होता ही रहता है, और क्या समझते हैं, हम तो आते हैं फिर जाते हैं, जन्म लेते हैं फिर वापस जाते हैं, कई ऐसे भी समझते हैं, ये आना जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटे, ये आवागमन से ही हम छूट जाएं, आना फिर जाना, हम छूट जाएं इस आवागमन से, छूट जाएं, परंतु ये हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है, इतना इम्पॉसिबल है कि आए ही नहीं हम, ये हो नहीं सकता। गुरु लोग भी कह देते हैं तो मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में ही है, और कोई खंड में इतने ऐसे मत मतांतर नहीं है, ढेर की ढेर मते हैं, एक मत न मिले दूसरे से, इसलिए गाय ना मुंडी मुंडी मते भिना, जितने दिमाग उतने विचार। तो ढेर की ढेर मत है, एक न मिले दूसरे से, रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या करते हैं, भभूति निकालते हैं, कोई घड़ी निकालते हैं, पहले तो बहुत हुआ ना, तो कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या, इसमें मनुष्य बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं ये चमत्कार को नमस्कार नहीं है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना है, रिद्धि से सिद्धि नहीं पर विद्धि से सिद्धि, तो अंतर बाबा बताते हैं। कोई इसमें मनुष्य बहुत खुश हो जाते हैं, वहां ये तो है, अब ये तो है बाबा का जो ज्ञान है, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप, रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं जिससे तुम अमर लोक के मालिक बनते हो, नर से नारायण बनते हो, सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हो और अमर कथा सुनने से अमर लोक के मालिक बनते हो। फिर क्या होता है, अमर लोक के मालिक बन गए, नारायण बन गए, फिर क्या होता है, फिर तुम कौड़ी मिसल भी बन पड़ते हो, कहाँ श्री नारायण बनते हो, कहाँ फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हो। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गंवाते हो, ये अनमोल जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गंवाते हो, ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे, मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे, क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए, ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। सो भी बाबा कहते एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं रूहानी कॉलेज से, सो भी बाबा कहते सिर्फ कॉलेज नहीं है, ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, दोनों ही खुल जाते हैं एक साथ, वो हॉस्पिटल भी और यूनिवर्सिटी भी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही है, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है, कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है, हेल्दी इतने बन जाते हो, इतनी तुम्हारी बाबा कहते आयु कल्पत्रु कल्प वृक्ष के समान हो जाती है, अमर बन जाते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है, अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते है ना, हाँ अल्लाह अवलदीन के नाटक में क्या दिखाते, ठका किया ऐसे किया और कारून का खजाना निकल आया, तो अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है, अल्लाह अवलदीन, तो अल्लाह अवल माना पहला, दीन माना धर्म, तो अल्लाह ही आकर के पहला धर्म स्थापन करते हैं, वो बहुत सुख देने वाला धर्म है, तो कौन सा धर्म, अल्लाह आकर के सबसे पहला स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, तो बाबा कहते अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। गीता में भी है, हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं, ये चोला तो तुम्हारा कैसा है? बाबा कहते पतित चोला है, आत्मा पतित चोला है और आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं ना, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, जो भी बाबा सुनाते सब सही सुनाते, रॉन्ग नहीं कहेंगे, वो है ही ट्रुथ। सत्युग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया, फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं, ये है ही झूठ खंड। बाबा आकर सच बताते हैं परंतु दुनिया तो झूठी है, तो झूठ खंड गाते भी हैं। झूठ खंड के लिए क्या गाते हैं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब कौन सा संसार झूठा है? कौन सा संसार झूठा है? सत्युग का संसार तो झूठा नहीं था ना, ये कलयुग का संसार झूठा है। कौन सा संसार झूठा है? ये सारा पुराना संसार झूठा है। सत्युग में सच्चा संसार था, दुनिया तो एक ही है, दो दुनिया नहीं है। सच्चा संसार कोई अलग है और झूठा संसार कोई अलग है, ऐसे नहीं, दुनिया एक ही है। सच्चा संसार बाबा बनाते हैं, फिर रावण आके झूठा संसार बनाता है उसको, फिर बाबा आके सच्चा संसार बनाते हैं। दुनिया तो एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है, नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है ना। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा साकार में बाबा मकान बनवाते थे, उस समय बाबा के आगे ये ट्रेनिंग सेंटर बना, बाबा ने बनवाया था। तो बाबा कहते यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बिचारे, हाँ बाबा कहते बिचारे काम चिता पर बैठ बिचारे एकदम जल गए हैं। भगवान के बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाए क्या बनाते हैं? ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं तो फिर इतना अटेंशन भी तो देना चाहिए ना। कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा बन रहे हैं, तो अटेंशन भी तो देना चाहिए ना। बाप को याद करना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, याद से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। बहुत बड़ी शिक्षा है ये। इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, आज का वरदान विशेष है। वरदान कैचिंग पावर। कैचिंग पावर बाबा देखो किस में यूज करते हैं, कैचिंग पावर, पकड़ने की शक्ति। तो कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर, असली संस्कार जो हमारे सतयुगी देवताई संस्कार थे उनको कैच कर, उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर, पकड़कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। बाबा ने बहुत अच्छी मिसाल दी है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे क्या मिसाल दिया होगा कैचिंग पावर का, जैसे साइंस दान, वैज्ञानिक क्या करते हैं, जैसे साइंस दान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं। अभी ये भी उनका एक अनुसंधान चल रहा है कि जो महाभारत कहते 5000 साल पहले हुआ था वो आवाज जो है वो कैच करे, ये ऐसा वो प्रकंपन उनको कैच करे, तो ऐसे साइंस वाले कह रहे हैं। तो जैसे साइंस दान बहुत पहले के साउंड को, आवाज को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच कर सको, उनको पकड़ सको, आपने आदि दैवी संस्कार। इसके लिए क्या करो, वो आदि दैवी संस्कार पकड़ सको, उसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था, देवता था और फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतने स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात हो। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ तब शक्तिशाली बनेंगे। हाँ, वैज्ञानिक ये भी समझ, सारे प्रकंपन सब इस ब्रह्मांड के अंदर ही है, सारे जो कुछ भी हुआ है बस उसको कैच करना है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। बहुत बड़ा पाठ है ये। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। यह व्यक्ति इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए बाबा कहते हैं एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखने वाले हैं, वो सदा कोई न कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दो नाव में पैर नहीं रखो, सौदा करना है तो एक सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए तो क्या होगा, है ना, गीत है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो दुनिया के लोग तो ऐसे ही ना दिल के हजारों टुकड़े कर देते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। बाबा कहते हैं ये दिल एक को दो, तो दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो हमारी दिल्ली जोन की सब वरिष्ठ दीदियां आ रही है, जो 30 साल से ऊपर समर्पित है वो सब आ रही है, काफी अभी पहुंच भी गई है, और कल तो आप देखेंगे बहुत बड़ी सभा। लेकिन उनके लिए ये डायरेक्शंस है, सबसे पहले तो आपको मालूम है हर रोज हमें कुछ न कुछ टोली मिलती है, तो आज जो क्लास की टोली है वो तपोवन से आया हुआ भुट्टा है, मकई, तो तपोवन से आया हुआ भुट्टा है जो क्लास की टोली है, वो आपको टोली विभाग के सामने मिल रहा है। क्लास की टोली भुट्टा है जो टोली विभाग के सामने मिल रहा है, वहां से ही आप टोली लेंगे। बाकी कई डायरेक्शंस है, ये सभी सुन के जाएंगे। तो सबसे पहले तो भट्टी वाली टीचर, जो भट्टी की टीचर आई है दिल्ली जोन से, हाथ उठाएं। देखो काफी तो आ चुकी है, बाकी जो वरिष्ठ दीदियां हैं वो तो अभी पहुंचने वाली है। आशा दीदी भी आएगी, चक्रधारी दीदी भी आएगी, और भी बहुत पुरानी दीदियां आ रही है। तो आप सबके लिए आज दिन 10:30 बजे भट्टी में आए हुए दिल्ली जोन की टीचर्स बहनें रिफ्रेशमेंट लेकर मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे, जहां पर 11 बजे निर्धारित भट्टी का उद्घाटन होगा। नहीं तो भट्टी हम लोगों की शाम को शुरू होती है, लेकिन सब टीचर्स आ जाएंगी सुबह, इसीलिए 10:30 बजे रिफ्रेशमेंट लेकर आपको फल देंगे। वो लेकर मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे और 11 बजे निर्धारित भट्टी का उद्घाटन होगा। और सभी भाई बहने विशेष ध्यान दे कि कल से मेडिटेशन हॉल में अमृत वेला दिल्ली से आई हुई टीचर्स बहने ही करेंगे। अमृत वेला दिल्ली से आई हुई टीचर्स बहने ही करेंगी, और भाई बहने अमृत वेला मेडिटेशन हॉल में नहीं जाएंगे। अन्य भाई बहने हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ पर अमृत वेला करेंगे, केवल दिल्ली की जो भट्टी में आई टीचर्स है वो ही करेंगी मेडिटेशन हॉल में भट्टी। भट्टी वालों का नाश्ता, दिन का और रात्रि का भोजन ऊपर के डाइनिंग हॉल में रहेगा। और कल से मुरली क्लास के ओम शांति भवन में आगे की जो 4 लाइंस है वो भट्टी की बहनों के लिए रिजर्व्ड रहेगी। जो भट्टी में नहीं है वो 4 लाइन छोड़ करके उसके बाद ही बैठेंगे। तो मैं कई सेवाधारी बहने आगे आगे बैठी है, और भी कई बैठी है वो पीछे बैठेंगे, केवल भट्टी की बहने ही ये 4 लाइंस में बैठेगी। तो कल से मुरली क्लास में ओम शांति भवन में आगे की 4 लाइन भट्टी की बहनों के लिए रिजर्व्ड रहेगी। तो अभी हम सब बाबा की याद